यशाया अध्याय 38 पद 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। ये बहुत ही गंभीर संदेश था। आप बीमार हो जाओ और परमेश्वर का भविष्यत वक्ता आकर कहे, अपना परिवार की व्यवस्था देख ले, तेरा ये हाल होने वाला है, तू मर जाएगा, जिएगा नहीं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको मरने से पूर्व पूरा करना आवश्यक होता है। उनमें अनेक महत्वपूर्ण काम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है कि मैं मरने से पहले परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को देखूं और सुधारूं। यशाया का कहने का अर्थ भी यही था, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यशाया अध्याय 38 पद 2 से लेकर 8 तक। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में डल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। ये बड़ी रोचक बात है, परंतु केवल ये सिद्ध करने के लिए कि जो परमेश्वर ने कहा वो सत्य होता है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में डल गई थी, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। देखिए, ये दिन भी एक लंबा दिन था। इस प्रकार कुल मिलाकर यहां दिन ढलने में लगभग 45 मिनट की देरी हुई थी। अब ये परमेश्वर ने कैसे किया, मुझे नहीं मालूम। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइबल के चमत्कारों का ठट्टा करते हैं। वे या तो उन्हें तर्कहीन कहते हैं या कहते हैं कि वे सच नहीं हैं। यहोशू के समय भी सूरज लगभग एक दिन रुका रहा, जिससे कि वो और उसके लोग दुश्मन को पूरा विनाश कर पाए। परंतु सूर्य शाम के समय रुका था और चंद्रमा एजलोन की घाटी में रुका होगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि पृथ्वी के दूसरी ओर अर्थात अमेरिका महाद्वीप पर रात लंबी रही होगी, और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। मेक्सिको तथा अमेरिका के आदिवासियों के ऐतिहासिक संग्रहों से इस बात की पुष्टि होती है। वेलिकोवेस की अपनी पुस्तक वर्ल्ड्स इन कोलिशन में यहोशू के समय सूरज के रुक जाने को संपूर्ण विश्व के समय के संदर्भ में सिद्ध करता है। कुछ टट्ठा करने वाले कहते हैं, जरा सुनिए कि पहले तो यह कि सूरज और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हैं, अतः सूरज के रुक जाने का अर्थ है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना रुक जाना। पृथ्वी एक घंटे में 1000 मील की रफ्तार में घूमती है, और यदि पृथ्वी एकदम से रुक जाए तो सबके सब पृथ्वी पर से उखड़ जाएंगे। इस प्रकार वे इस चमत्कार की सत्यता का इनकार करते हैं कि ऐसा होने से तो पृथ्वी की वस्तुएं सब आकाश में उड़ जाएगी। कौन कहता है कि परमेश्वर ने इतना जोर का ब्रेक मारा था? परमेश्वर ने ब्रेक लगाने में 15 मिनट लगाए थे। ओह, ये तो समझने में कुछ सहज सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 1000 मील की रफ्तार को कम करके रोकने के लिए 15 मिनट लगाए जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेक कब लगी। अब मान लो कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रफ्तार को इतने समय में रोका, तो जान लीजिए कि ये उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार की आप अपनी कार को आधा मील आगे की लाल बत्ती पर रोकने के लिए ब्रेक लगाने में 5 मिनट लगाते हैं। इस कारण ऐसी कोई समस्या नहीं आती कि अपनी आपातकालीन ब्रेक लगाए कि सबके सब बाहर जाके गिरे। उसने ब्रेक लगाया और आराम से पृथ्वी को रोका था। मेरे लिए तो चमत्कार यह है कि उसने पृथ्वी का घूमना फिर से कैसे आरंभ किया। यहां से समझना आसान है, उसने उसे थोड़ा पीछे घुमाया 10 अंश, फिर उसे चला दिया। यहां धर्मशास्त्र के इन पक्षों को समझने में मनुष्य को कठिनाई क्यों होती है? इसका एक ही कारण है, और वो ये है कि परमेश्वर के विषय में उनकी धारणा बहुत संकीर्ण है, जिसका एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी अपनी धारणाएं बना रखी है। यदि आप इस परमेश्वर में वो विश्वास रखते हैं जो बाइबल द्वारा प्रकट हो, तो इन विषयों में आपको कोई समस्या का सामना करना ही नहीं होगा। यदि परमेश्वर उत्पत्ति 1:1 आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये तो काफी बड़ा परमेश्वर है। यदि उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, तो यदि वो चाहे कि पृथ्वी का उसकी धुरी घूमना कुछ देर के लिए रोक ले या उसे दिशा निर्देश दे, तो और उसे रोकने में उसे कोई समस्या ही नहीं है, और इसी प्रकार उसे फिर से घुमाने में कोई परेशानी नहीं है। रोचक बात तो यह है कि विल्कोवेस्की अपनी पुस्तक में लिखता है कि जब परमेश्वर ने उसे फिर से घुमाया, तब उसकी दिशा परिवर्तित कर दी, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर। वो यही विश्वास रखता है कि उसे अपनी पुस्तक में सिद्ध करता है। यहां हमारे ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर ने राजा के सामने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहा, सुन, मेरा कहना सच है, तुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक बात सिद्ध करके दिखाता हूं। जब हिजकिय्याह बीमार था, उसने ये लिखा, तू नकारात्मक अंगीकार के विषय कहता है। मेरे कहने का अर्थ है कि उसका अंगीकार नकारात्मकता में एक आदर्श था। जब वो बीमार था, तब उसने यही लिखा। यशाया अध्याय 38 पद 10 से लेकर 13 तक, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा, मैं या को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू की नाई उठा लिया गया है, मैंने जुलाहे की नाई अपने जीवन को लपेट दिया है, वो मुझे तांत से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा, वो सिम की नाई मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। और कैसा नकारात्मक अंगीकार। अब यदि जो आप कहते हैं वही आपको मिले, तब जो हिजकिय्याह का अंत ही था, परंतु परमेश्वर ने उसके नकारात्मक अंगीकारों के उपरांत भी उसकी प्रार्थना के उत्तर में उसे 15 वर्ष प्रदान किया। अब यहां एक समस्या आती है, क्या उसे उस समय में वास्तव में मर जाना था? ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर की पहली इच्छा तो ये थी कि वो उस समय ही मर जाए। अब यहां एक थियोलॉजी का विवाद उत्पन्न होता है कि क्या प्रार्थना वास्तव में होनी को टाल देती है? मैं प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा को बदल सकता हूं? परमेश्वर ने घोषणा की है, मलाकी 3:6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। तो क्या मुझे प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा को बदलना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा को बदलने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं परमेश्वर की इच्छा को बदलने के जिस एकमात्र उद्देश्य को देखता हूं वो यही है कि मेरे विचार में मेरी समझ परमेश्वर से अधिक है। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जैसे सोच। ये बड़ी रोचक बात है कि अपनी प्रार्थनाओं में हम प्रायः परमेश्वर की इच्छा को बदलने के लिए उसे उत्तेजित करने का काम करते हैं। कम से कम कुछ नहीं तो हमारा तरीका तो वैसा ही है कि हम अपनी प्रार्थनाओं द्वारा परमेश्वर की इच्छा को बदलना चाहते हैं। हम उसे सोचने की समझ प्रदान करना चाहते हैं और उसको समझाना चाहते हैं कि हमारा सोचने का तरीका ही सही है। मैं परमेश्वर को अपने कार्यक्रम समझाता हूं, क्या ये वास्तव में प्रार्थना का बल है और उद्देश्य है कि परमेश्वर की इच्छा में परिवर्तन लाए? क्या प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर को बदल सकती है? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा है, परंतु यहां वो क्षेत्र भी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को बदलें, परंतु प्रायः परमेश्वर की सीधी इच्छा ही सबसे पहले व्यक्त की जाती है, यही सर्वोत्तम है। परंतु होता यह है कि मैं वहां टांग अड़ाता हूं और धक्का मारता हूं और जोर लगाता हूं, तब परमेश्वर कहता है, ठीक है, तुझे यही चाहिए तो ले ले। ऐसा प्रतीत होता है राजा बालाक ने बिलाम के पास संदेश भेजा कि वो उस क्षेत्र में आने वालों को श्राप दे, तब ऐसा ही हुआ होगा। बिलाम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने बिलाम से कहा, राजा के पास मत जा, इन लोगों को श्राप मत देना, क्योंकि वे मेरे लोग हैं। अतः बिलाम ने राजा बालाक को संदेश भेजा और कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, हे राजा, मैं आ नहीं सकता, परमेश्वर मुझे आने नहीं दे रहा है, इसी कारण मैं उन लोगों को श्राप भी नहीं दे सकता। राजा बालाक ने और बड़े बड़े इनाम लेकर उसके पास संदेश वाहक भेजे, उनमें बहुत लूट का धन था। उसने कहा, मेरे पास आकर इन लोगों के बारे में मुझे बताओ। बिलाम लालची मनुष्य था। जब उसने उपहार स्वरूप इतनी अधिक संपत्ति देखी जो राजा ने उसे भेजी थी, तब उसने कहा, आह, मैं तो उसे काम में भी ना ले पाऊंगा, मुझे एक नया घर और एक गधा लाओ। उसका मन लालच से भर गया था। उसने फिर प्रार्थना की, जबकि परमेश्वर ने उससे पहले ही मना किया था कि वो राजा के पास ना जाए। मैं बिलाम को सुन सकता हूं, उसने क्या कहा, ओह प्रभु, मुझे जाने दे, प्रभु मैं अच्छे से व्यवहार करूंगा, बस मुझे एक बार जाने दे। प्रभु, आखिरकार वहां जाने में नुकसान ही क्या है? प्रभु, कृपया करके मुझे जाने दे हे परमेश्वर। अंत में परमेश्वर ने कहा, ठीक है जा, पर सावधान रहना कि जो मैंने कहा है उसके अतिरिक्त और कुछ न कहना। परंतु परमेश्वर का क्रोध बिलाम के विरुद्ध भड़क उठा था। आपने देखा कि बिलाम के पीछे पड़े रहने पर अंत में परमेश्वर ने उसे काम चलाऊं हां कह दिया, परंतु वास्तव में उसके जीवन में ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसके मार्ग में परमेश्वर का स्वर्ग दूत तलवार लिए खड़ा था। उस बुद्धिमान गधे ने स्वर्गदूत को देख लिया जबकि बिलाम उसे नहीं देख पाया था। गधा मार्ग से हट गया। बिलाम मार मार के उसे फिर से मार्ग पर लाया, परंतु स्वर्गदूत मार्ग पर खड़ा था और गधा स्वर्गदूत को देखकर दीवार से ऐसा सट गया कि बिलाम का पाव दीवार से दब गया। तब उसने उसे फिर से मार मार कर आगे बढ़ाया। स्वर्गदूत वहां मार्ग में खड़ा था और गधे को आगे बढ़ने का स्थान नहीं मिल रहा था, अतः वो बैठ गया। बिलाम ने उसे पीटना आरंभ कर दिया। गधे ने कहा, क्या मुझे 3 बार मारना तेरे लिए उचित था? क्या मैं जब से तेरे पास आया हूं स्वामी भक्त गधा नहीं हूं? क्या मैंने पहले कभी तेरे साथ ऐसा किया है? बिलाम अत्यधिक क्रोध में था। उसने गधे से कहा, मैं तुझे मारकर उचित ही करता हूं। यदि मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे जान से मार डालता। ये तो प्रत्यक्ष था कि वो जाने के लिए परमेश्वर पर बल डाल रहा था और परमेश्वर ने इजाजत देते हुए कहा, हां जा, परंतु वो वास्तव में परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर कभी उन बातों की अनुमति दे देता है जो उसकी इच्छा में ना हो। मैं उस पर अपनी इच्छा अपने तरीके से लाद सकता हूं, जहां परमेश्वर नहीं चाहते हुए भी कह देता है, ठीक है यदि तू यही चाहता है तो कर। परंतु सत्य तो यह है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। यहां ये स्मरण रखे कि जब भी किसी बात की जोर जबरदस्ती की जाती है तब परिणाम विध्वंसक होता है। मेरे विश्वास में हिजकिया के मरने का समय आ गया था और उसके लिए मरना ही अच्छा होता। यदि हिजकिया उस समय मर जाता तो इसराइल राष्ट्र का बहुत भला होता। वे 15 वर्ष जो परमेश्वर ने उसे दिए विनाशकारी समय रहा। 2 वर्ष पश्चात उसका पुत्र मनश्शे उत्पन्न हुआ। हिजकिया का देहांत हो गया और मनश्शे राजा बना। मनश्शे यहूदा के राजाओं में सबसे दुष्ट और भ्रष्ट राजा था। मनश्शे के अभक्तिपूर्ण राज के कारण ही यहूदा का पतन हुआ और यहूदा फिर न उठ पाया। यदि हिजकिया उसी समय मर जाता जब परमेश्वर चाहता था तब मनश्शे का जन्म ही नहीं हो पाता और यहूदा देश का इतिहास कुछ और होता। हम जब भी परमेश्वर की इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा थोपते हैं तब हमें सबसे उत्तम वस्तु प्राप्त नहीं होती है। परमेश्वर का तरीका ही सबसे अच्छा होता है। यद्यपि उस समय हमारी समझ में कुछ न आए, परमेश्वर का तरीका सबसे अच्छा होता है। अतः ये संभव है कि हम जोर जबरदस्ती करके परमेश्वर को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सहमत कर ले, परंतु उसका परिणाम विनाशक ही होता है। ये कितना अच्छा होगा यदि हम ये कहना सीखें, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए। और इस प्रकार हम परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में चलते रहें। अतः हिजकिया ने प्रार्थना की, वो रोया और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहा। यशाया अध्याय 38 पद 14। मैं सुपा बेनी वो सारस की नाई च्यू च्यू करता, पूरी रात वो चिड़ियों की तरह च्यू च्यू करता रहा। यशाया अध्याय 38 पद 14 में आगे लिखा है, मैं पिंडुक की नाई विलाप करता हूं, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। देखिए वो परमेश्वर के पीछे कैसे पड़ा हुआ था। अतः परमेश्वर ने कहा, ठीक है, गिड़गिड़ाहट बंद कर और तुझे 15 वर्ष और चाहिए, ले ले। यशाया अध्याय 38 पद 15 से लेकर 20 तक, मैं क्या कहूं, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित है और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूं। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यही वो भजन है जो हिजकिया ने इस समय लिखा था और ये हिजकिया के भजन के नाम से जाना जाता है। यशाया अध्याय 38 पद 21 और 22, यशिया ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिया के फोड़े पर बांधी जाए, तब वो बचेगा। और हिजकिया ने पूछा था कि इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा